श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आइए मेरे पीछे दोहराइए और भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है आज सायंकाल के इस हरि कथा में। आज शाम के वक्त दो बजे के सत्संग में ये चर्चा चली थी कि भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है, हरि कथा हरि कीर्तन में जाने का हमारा लक्ष्य क्या है, और इस विषय के ऊपर चर्चा करने में ये बात आई थी कि जब भगवत गीता की जहां समाप्ति होती है वहां से श्रीमद् भागवत आरंभ होती है, और भगवत गीता की समाप्ति होती है शरणागति के ऊपर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 18वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके केवल अकेले मेरे शरण में आओ। शरणागति जहां भगवान अर्जुन से मांगते हैं कि मेरे अकेले के शरण में आओ, और जब भगवान की शरणागति कोई लेता है तो भगवान की भक्ति आरंभ होती है, और जब एक बार भगवान किसी को स्वीकार कर लेता है, शरणागत को स्वीकार कर लेता है, तो फिर भगवान उसका सारा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। भगवान का भक्त बनने का अर्थ होता है सब भार भगवान के ऊपर सौंप देना, सब कुछ भगवान के हवाले कर देना। तो भगवत गीता शरणागति का शास्त्र है, और श्रीमद् भागवत में भगवान की शुद्ध भक्ति आरंभ होती है। तब इस बात के ऊपर चर्चा चली थी, हरे कृष्ण तब इस बात के ऊपर चर्चा चली थी कि भगवान की भक्ति में क्या प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति का लक्ष्य होता है श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्रेम श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भगवान की भक्ति का लक्ष्य है। तो भगवान का प्रेम कहाँ है, कृष्ण प्रेम कहाँ है, तब इसका उत्तर हमने ये पाया था, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम परिपूर्ण रूप से जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सबके हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है, जन्म से ये हमारा अधिकार है कृष्ण प्रेम का। लेकिन वो कृष्ण प्रेम जो हम सबके हृदय में है वो ऐसे है जैसे लकड़ी के अंदर आग है, लकड़ी सब में आग तो होती है लेकिन लकड़ी को घिसाने के बगैर आग प्रकट नहीं होती है। ऐसे सबके हृदय में भगवान का प्रेम तो है लेकिन वो बाहर कैसे आए, उसके लिए क्या साधन है। तो ये बात सुबह चली थी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का ये एक श्लोक, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, नित्य का मतलब सदा के लिए, सिद्ध का मतलब पूरा तैयार है। साध्य कभू नाही, किसी साधन से प्राप्त नहीं होगा। जैसे तप जप तप दान आदि साधन से कृष्ण भक्ति और प्रेम प्राप्त नहीं होता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, सुखों का सुख प्राप्त हो सकते हैं, दुखों का निवारण हो सकता है लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। वो किसी साधन के किसी साधन की उसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो नित्य सिद्ध है। तो फिर प्रकट कैसे हो, तो कहते शुद्ध चित्ते शरवणादि करे होए उदय। वो प्रेम का उदय होता है, कृष्ण प्रेम का उदय होता है जब शुद्ध चित्त से भगवान का कथा का श्रवण और भगवान के कीर्तन का श्रवण किया जाता है, या भगवान की कथा कीर्तन में जाके बैठ के सुनना और भगवान के नाम का गुणगान किया जाता है तो वो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। तब ये बात हम आज शाम को सत्संग में बता रहे थे, तो वो चित्त शुद्ध कैसे हो, शुद्ध चित्ते श्रवण आदि करे। श्रवण आदि, श्रवण मतलब सुनना और आदि का मतलब कीर्तन करना, जप करना भगवान के नाम का। लेकिन ये शुद्ध चित्त से जब किया जाए तब भगवान का प्रेम प्रकट होता है। तो चित्त शुद्ध कैसे हो और चित्त है क्या, इसके ऊपर चर्चा चली थी। चित्त क्या है, चित्त सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। जैसे बाहर का ये शरीर जो हम एक दूसरे का देखते हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का बना हुआ। वो सूक्ष्म शरीर में चित्त जो है उसको शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। तो वो शुद्ध कैसे हो, इस बात के ऊपर चर्चा चल रही थी कि चित्त की शुद्धि जब होगी तब भगवत प्रेम प्रकट होगा। हमारा भगवान की कथा में, कृष्ण कथा में, भागवत में, भगवत गीता में सुनने के लिए आने का उद्देश्य होता है कि हम इस जन्म में भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके, अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर सके। जो संसार छोड़ने का समय आए उससे पहले हमारा और भगवान का परिचय हो चुका होना चाहिए। जब यहाँ से सबसे विदा हो तब हमको कोई लेने के लिए खड़ा हो, बाहें फैलाए हुए इंतजार में रहे कि कब हमारा भक्त वापस मेरे पास लौट के आता है। अगर ये रिश्ता नहीं बनाया और यहाँ से बगैर किसी भगवान के साथ संबंध बनाए हुए इस संसार का भोग करके चले गए, उसके लिए हमारे उपनिषद कहते हैं वो कृपण है। कृपण को कहते हैं कंजूस को। कृपण कौन है, कृपण वो है जो मानव जन्म प्राप्त करके भगवत प्राप्ति के बगैर संसार से चल बसता है, वो उसको कृपण कहता है शास्त्र। आत्म साक्षात्कार किया नहीं, भगवत प्रेम की प्राप्ति की नहीं, ये संसार का 50, 60, 70, 80, 90 साल का जीवन ऐसे खा पी के पूरा करके यहाँ से चल बसा, उसको कृपण कहते हैं। जैसे धनी लोग हो, लाखों करोड़ों हो, लेकिन खाने के लिए दो टाइम को उसके पास टाइम हो ना हो तो उसको कृपण बोलते हैं कि सब सुविधाएं हैं लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसे भगवान ने मानव जन्म दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, देहधरी का फल ये भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज मिले न बारंबार, बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, इसमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऋषभदेव श्रीमद् भागवत में बताते हैं अपने बेटों 100 को सामने बिठाकर, जिसमें एक भारत भी है, उस भारत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। मेरे बेटे, इंद्रिय तृप्ति के सुख तो सब जन्मों में मिलते हैं, लेकिन दिव्य तप करो अगर अलौकिक सुख को प्राप्त करना था। तपो दिव्यम, दिव्य तप करो मेरे बेटे, ये सुख तो हर जन्म में मिलते हैं। किसी भी कीट पतंग के जन्म में चले जाओ, मच्छ कच्छ के जन्म में चले जाओ, शुकर कुकर के जन्म में चले जाओ, ये तो खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना। आहार निद्रा, खाना निद्रा करना, भय अपने रक्षा के लिए कोई साधन जुटाना, मैथुन्य स्त्री पुरुष आपस में जीवन बिताना, बच्चे पैदा करना, ये तो हर जोनी में हो रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। मानव में क्या विशेष है? धर्माधिको विशेष, धर्म अधिक और विशेष है, धर्म के ऊपर चलने वाला मानव कहलाता है। तो ये धर्म क्या है? धर्मात साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान ने साक्षात दिया है। इसलिए भगवत गीता का ये श्लोक कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म भगवान स्थापन करते हैं, धर्म भगवान की शिक्षाएं हैं। जैसे एक सरकार है, इसका नियम है, हाँ सरकार का कानून चलता है, संविधान है बनाया हुआ, जो उसका उल्लंघन करता है उसको सजा मिलती है, और जो उसके ऊपर चलता है उसको अच्छा नागरिक कहा जाता है। जैसे जैसे देश का कोई नियम होता है जिसको पालन करना सब नागरिकों का धर्म होता है, अगर नहीं पालन करने वाले को अपराधी माना जाता है, ठीक इस प्रकार से धर्म भगवान का नियम है। धर्म भगवान इस जीवन में नियम देते हैं जिनके ऊपर चलना हर एक का धर्म है, अगर नहीं चलेगा तो वो अपराधी है, और उस अपराधी को दंड कौन देता है? इस संसार में कोई सरकार का नियम तोड़ता है तो उसको कौन दंड देता है? पुलिस दंड देती है, ऐसे प्रकृति उसको दंड देती है। ये प्रकृति भगवान की एक शक्ति है जो सबको इस संसार के अंदर जो भगवत धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको ये प्रकृति दंड देती है, और प्रकृति के कोप जो दंड के रूप में आते हैं सबको भोगने पड़ते हैं। तो भगवत धर्म ही अधिक है, जो धर्म के ऊपर मानव नहीं चलता है तो पशु से उसको कोई विशेषता नहीं है। तो धर्म के ऊपर चलना पहले मानव की मानवता है, मानव इंसान को इंसान समझना ही तब चाहिए जब वो धर्म के ऊपर चलता है, नहीं तो दो पांव का पशु चल रहे हैं। इस धरती के ऊपर धर्म के आचरण अगर कोई नहीं करता है तो उसका जीना केवल खाने पीने सोने के लिए मौज उड़ाने के लिए है, तो पशु से ज्यादा उसका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म के ऊपर चलना अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के अंदर जब से धर्म का आलोप होने लगा है और पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते हुए हमने भोग को प्रधान बना लिया है, तब से मानवता के जो नियम और उसूल थे, जो धर्म की नीतियां थी इस देश के अंदर से, वो आस्ते आस्ते कपूर की तरह उड़ती हुई जा रही है, और उसका परिणाम क्या निकला है? चरित्रहीनता इस देश के अंदर दीमक की तरह जड़ों को खा रही है। चरित्र धर्म के ऊपर आधारित होता है। सब लोग आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत चरित्रवान हो, हमारा परिवार चरित्रवान हो, हमारा देश चरित्रवान हो, लेकिन ये चरित्र कौन से पात्र में रह सकता है? जैसे पानी पिलाने के लिए आपको कहा जाए कि हमको पानी दो, तो कोई पात्र होगा जिसमें आप हमको पानी देंगे, गिलास होगा, लोटा होगा, कटोरा होगा, नहीं तो पानी नहीं दे पाएंगे। ऐसे कोई पात्र होगा जिसके अंदर आपको पेय वस्तु दी जाएगी। तो चरित्र कौन से पात्र में रखा जा सकता है? चरित्र केवल अध्यात्मिकता के पात्र में ठहरता है। अध्यात्मिकता जहां उड़ जाती है वहां चरित्र नाम की कोई चीज बाकी नहीं बचती। और चरित्रहीनता पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा आजकल की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या संसार के अंदर चरित्रहीनता है, और ये चरित्रहीनता अध्यात्मिकता के लुप्त होने से हो रही है। तो अति आवश्यक है कि हमारे को इस धर्म का, जो भगवान ने धर्म की शिक्षाएं दी है, इसके ऊपर चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। तो ये बात, धर्म क्या हमको देता है? धर्म रक्षिति रक्षतः, महाभारत में जो धर्म का आचरण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म के ऊपर चलेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म स्वयं भगवान देते हैं और धर्म के ऊपर चलने वालों की रक्षा स्वयं साक्षात भगवान करते हैं। और धर्म के ऊपर चलने वालों को ही स्थापन करने के लिए भगवान इस पृथ्वी के ऊपर पधारते हैं। ये तो महाभारत के अंदर प्रसिद्ध है कि धर्मराज युधिष्ठिर को राज देने के लिए, उसको इस पूरी पृथ्वी का राजा बनाने के लिए कि लोग धर्म का आचरण करें, तो धर्मराज को ही राजा बनाना चाहिए। पूरी महाभारत के युद्ध के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये शिक्षा दी कि धर्म के आचरण के लिए राजा धर्मात्मा होना चाहिए। आपको ये आश्चर्य लगेगा कि श्री महाभारत के अंदर धर्म तो दोनों पक्षों में था। धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में एक तो धर्म था पांडवों के पक्ष में, और विदुर के रूप में धर्म था कौरवों के पक्ष में। विदुर भी तो धर्म के ही अवतार थे, वो भी धर्मराज ही थे। दो धर्मराज एक समय में अवतार लिए हुए थे, एक तो पांडवों में पक्ष में थे और एक कौरवों में पक्ष थे। धर्म तो सबके पास होता है, अच्छों के पास भी धर्म होता है और बुरों के पास भी धर्म होता है, असुरों के पास भी धर्म होता है तो देवताओं के पास भी धर्म होता है। पांडवों के पास धर्मराज था, सब पांडवों धर्मराज जो कहते थे वैसे करते थे, जो धर्म की आज्ञा में चलते थे पांडव, धर्मराज की आज्ञा में चलते थे पांडव, तो उनके संग में भगवान श्री कृष्ण जाके बैठता था। जब कोई धर्म के साथ चलेगा तो भगवान उनके संग में आकर बैठेंगे। और दूसरी ओर धर्म तो था कौरवों में पक्ष में, लेकिन उसको कोई सुनता नहीं था। वो सही मार्ग बताने का प्रयास करता था तो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन उसकी बात को काट के उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो धर्म को जो नहीं सुनता है, धर्म तो तुम्हारे पास है, अगर उसकी बात नहीं सुनोगे, उसके रास्ते के ऊपर नहीं चलोगे, तो दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरह सब नाश हो जाए। समृद्धिशाली राज हस्तनापुर का दुर्योधन के पास था। दुर्योधन के राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। दुर्योधन के कंधे के ऊपर लक्ष्मी का वास था। दुर्योधन जितना खर्चा करेगा उससे ज्यादा उसके पास धन इकट्ठा होता था। और ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के दुर्योधन को कोष अध्यक्ष बनाया था कि इसको तो दुर्योधन को पांडवों से बहुत ईर्ष्या है, ये ज्यादा खर्चा करेगा, इसलिए खर्चा करेगा कि इसका खजाना खाती खाली हो जाएगा तो ये बदनाम हो जाएंगे। वो तो ऐसे करेगा, लेकिन भगवान जानते हैं जितना ये खर्चा करेगा उतना बढ़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी इसके कंधे के ऊपर निवास करती। और दुर्योधन जितना खर्चा करता था उससे ज्यादा धन बढ़ता था और बड़ा वैभवशाली उनका ये सारा राजसूय यज्ञ हो गया। तो ऐसा दुर्योधन जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके पास सेनापति कौन था? भीष्म पितामह, जिस जैसा वीर इस पृथ्वी के ऊपर आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। ऐसा अखंड ब्रह्मचार्य पालन करने वाला भीष्म पितामह, गंगा पुत्र जिसका सेनापति हो, और विश्व के अंदर परशुराम का शिष्य द्रोणाचार्य, जिसके पास शिक्षा देने वाला अस्त्र शस्त्र का दूसरा सेनापति हो, और कर्ण जिसके पास सूर्य पुत्र कर्ण और तीसरा परशुराम का शिष्य हो, ऐसे तीन जिसके पास महायोद्धे बलवान सेनापति हो, उसको कौन इस पृथ्वी के ऊपर हरा सकता है? लक्ष्मी की कमी नहीं हो, इतनी बड़ी शक्तिशाली जिसके पास सेना हो, उसको किस चीज का संसार के अंदर भय हो सकता है? कौन सा उसके पास डर हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी केवल धर्म का मार्ग छोड़ने से, धर्म की शिक्षाओं का निरादर करने से उस दुर्बुद्धि दुर्योधन को महाभारत के युद्ध में लाखों करोड़ों नहीं, कई अक्षणे सेनाओं के समेत समाप्त होना पड़ा। केवल किस क्यों ये सब कुछ क्यों करना पड़ा? क्या कमी थी दुर्योधन में? सिर्फ एक ही कमी थी कि धर्म का आचरण नहीं करता था, इसलिए भगवान उसके साथ नहीं थे। उसके साथ भगवान नहीं थे और धर्म का आचरण नहीं था, धर्म की बात नहीं मानते थे। धर्मराज के रूप में विदुर जो उनको नीति बताते थे, जो मार्ग बताते थे, उसको स्वीकार नहीं करते थे, तो भगवान उनके पास नहीं थे। और भगवान नहीं थे तो सब कुछ नाश हो गया। जिनके संग भगवान नहीं, भगवान सबके लिए समान रूप से सबके साथ हैं। तो भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु मन न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय। मैं सबसे संभाव रखता हूं, मेरे लिए सब बराबर है, न मेरा कोई शत्रु है, न कोई मेरा कोई मित्र है, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन जो भक्त मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके हवाले अपने आप को कर देता हूं। लेकिन ये मेरा स्वभाव है कि कोई भक्त अगर मेरे पास आ जाता है, मेरे चरणों में गिर जाता है, तो मैं ऐसे शरणागत भक्त को कभी छोड़ नहीं सकता, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि एक बार कोई मेरे सामने आके, एक बार सिर्फ मेरे सामने आके कह दे कि मैं भगवान आपका हूं, तो मेरा ये, भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है कि उसकी मैं रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है। और आगे चल के कहते हैं सीता जी को कि ऐसे भी हो सकता है कोई समय आए तो मैं सीता जी आपका परित्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण का परित्याग कर सकता हूं, लेकिन अपने व्रत का परित्याग नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। वाल्मीकि रामायण में इतना स्पष्ट लिखा है कि एक बार मेरे सामने आकर मुख से कोई कह दे कि मैं राम जी आपका हूं, तो ये मेरा व्रत है कि उसकी मैं रक्षा करता हूं, और मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन अपने व्रत को नहीं छोड़ सकता हूं। ये स्पष्ट रूप से भगवान ने, और हमने देखा कि भगवान ने अपने व्रत को पालन करने के लिए मां सीता का भी परित्याग किया और लक्ष्मण का भी परित्याग किया, एक एक, एक रामायण के अंदर एक स्थान के ऊपर आकर, लेकिन अपने सत्य और वचन को कभी भगवान ने छोड़ा नहीं। विभीषण को हनुमान का संग मिल गया, एक भक्त का संग मिल गया, रह रहा था रावण की राजधानी में, असुरों के राज में, राक्षसों के राज में रह रहा था, लेकिन एक भक्त का संग मिल गया। भक्त के संग से उसका विश्वास पक्का हो गया कि राम जी के शरण में जाना चाहिए। विभीषण चल के आकाश मार्ग से आया, आकाश मार्ग से ऊपर खड़े होता है, नीचे नहीं उतरा है, ऊपर टंगा हुआ है, कहता श्री राम मैं आपके शरण में आया हूं, शरण में आया है लेकिन नीचे नहीं उतर रहा है, ऊपर टंगा हुआ है। तब नीचे सभा लगाई गई, सब आके इकट्ठे हुए, भगवान राम कहते देखिए ये ऊपर से विभीषण जी आया है, शरण मांग रहा है, क्या करना चाहिए, सबकी क्या राय है। तब सुग्रीव कह रहे हैं कि इसको शरण में नहीं लेना चाहिए, नग्रही शरणम, इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। और फिर कहते हैं क्योंकि दुष्ट है, ये दुष्ट है इसलिए इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। और फिर कहते हैं ये तो रावण असुर का भाई है, यहां रहेगा तो हमारा सारा समाचार उसको देगा। भगवान को ये तथ्य अच्छा नहीं लगा, भगवान ने हनुमान जी से कहा आपकी क्या राय है बजरंग, बोलो बजरंग बली। तो मारुति नंदन कहते हैं इसको शरण में लेना चाहिए, ग्रही शरणम आप लीजिए, क्योंकि ये शिष्ट आदमी है, शिष्टाचारी है, दुष्टाचार नहीं है। तब श्री राम जी बोले सुग्रीव तुम्हारी तो दोनों बातें ठीक नहीं है, शरण में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये दुष्ट है, ये दोनों बातें ठीक नहीं है, शरण में आया है तो इसको लेना चाहिए। लेकिन हनुमान जी तुम्हारी एक बात तो ठीक है, शरण में लेना चाहिए, लेकिन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये शिष्ट है, ये ठीक नहीं है। कैसा भी दुष्ट हो, पापी हो, अपराधी हो, अगर एक बार शरण में आ जाए तो उसको लेना ही होता है, ये भगवान कह रहे हैं। और भगवत गीता में इस बात की पुष्टि होती है, भगवत भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये शब्द निकलते हैं अपिचेतस पापेभ्य पाप कृतम। अरे पापियों में कोई बड़ा महापापी भी हो, एक बार मेरे शरण में आ जाए, मेरे इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने का प्रयास कर ले, तो सारे पापों से ऐसे तर जाता है, बताते हैं ऐसे तर जाता है संसार सागर के सारे पापों से, उसके सारे पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। यथा यदांसी अग्नि समेधो भस्म सात कुरुते, जैसे जैसे अग्नि सारी लकड़ियों को एकदम जला के भस्म करके देती है, ऐसे उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं अपीचे तस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थतो हि स। अरे कोई दुराचारियों में महादुराचारी हो, पापियों में महापापी हो, एक बार मेरे शरण में आके गिर जाता है तो फिर वो उसको साधु मान लो, क्योंकि वो ठीक जगह पे आया है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जयंत इंद्र का बेटा है और मां सीता की गोद में सर रखे हुए भगवान राम एकांत में लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी बाहर हैं। उस वक्त जयंत दुष्ट के मन में कुछ दुष्टता आती है, एक कौवे का वो शरीर धारण करता है और मां सीता के छाती के ऊपर वक्षस्थल के ऊपर अपने पंजे से प्रहार करता है। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखा है। तुलसीदास ने बहुत थोड़ा थोड़ा इसको सरल कर दिया है भैंस, बोला नहीं चूंच उसने पांव में मारी माता सीता के, चूंच मारी। लेकिन वाल्मीकि जी लिखते हैं नहीं, वक्ष स्थल के ऊपर पंजे से प्रहार किया और प्रहार के कारण भगवान राम छटपटा के उठे, देखा तो लहूलान छाती से निकल रहा है माँ सीता के। भगवान ने अपने कुश आसन से एक तिनका निकाला, उसके ऊपर ब्रह्म अस्त्र अभिमंत्रित किया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। आज तक हमने नहीं सुना है कि किसी कौए के ऊपर ब्रह्म अस्त्र किसी ने छोड़ा हो। किसी दुष्ट के ऊपर छोड़ा जा सकता है, किसी शत्रु के ऊपर, के कौए के ऊपर ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया भगवान श्री राम ने। जयंत भागता हुआ अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा भगवान के ब्रह्म अस्त्र के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यहां से निकलो। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने धक्का देके बाहर निकाल दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने कहा मैं भगवान के अस्त्र के सामने कुछ नहीं कर सकता हूं। तब नारद जी सामने आते हैं और नारद बहुत बड़ी दयालु है, बोले कहां जा रहा है जयंत? बोले कहां जा रहा हूं, क्या पीछे देखो ब्रह्म अस्त्र आ रहा है। बोला किसने यहां कहां से आ रहा है ब्रह्म अस्त्र? बोला इस तरीके से मैं ऐसे मेरे से अपराध हो गया और मैं मासी तक को अपने पंजे से प्रहार किया। और राम जी ने बोला जिसने जहां से ये ब्रह्म अस्त्र आता है वहीं वापस जाओ, जहां से दुख शुरू हुआ है वहीं दुख तुम्हारा नाश होगा, और कोई रास्ता नहीं। अब कौआ जयंत वहां से उड़ के वापस आना चाह रहा है भगवान राम के शरणों में, लेकिन इतना भयभीत है आके गिरता है भगवान के शरणों में, लेकिन उल्टा गिरता है, मुंह दूसरे तरफ है और पूछ भगवान की तरफ है। मां सीता देखती है, अरे ये जयंत मुझे प्रहार किया छाती के ऊपर, तो क्या हुआ, ये सब है तो मेरे बच्चे ही ना, मैं सबकी जगत की माता हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। मां को दूध पीते हुए छाती में बच्चा कभी लात मार देता है, कभी नाखून से खून निकाल देता है, तो मां थोड़ी उसको फेंक देती है। उस मां की करुणा इतनी, सीता मां को आती है अपने हाथ से उठा के उस जयंत, उस कौए जयंत को उसका मुख भगवान राम की तरफ कर देती है। और जैसे भगवान की तरफ मुख हो जाता है तो ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। भगवान के शरण में आने वाले को भगवान ही केवल शांत कर सकते हैं, उसका सारा पाप नाश कर सकते हैं और उसको अपने शरण में ले सकते हैं। तो शरणागति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। शरण आदमी कम लेता है, कब लेता है, जब भगवान के धर्म के ऊपर आचरण करेगा तब ये शिक्षा मिलेगी कि भगवान का शरण लेना ही जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान का शरण लेने के लिए उद्देश्य क्या है, भगवान का शरण क्यों हम लें? उद्देश्य यह है कि हमारा भगवान के प्रति, भगवान के प्रति हमारी प्रीति जो हमारे हृदय में है वो जागृत हो जाए। भगवत प्रेम, धर्म प्रेम है, धर्म में मुख्य चीज प्रेम है, और वो प्रेम भगवान हमसे करते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इतना ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि हमारी हर व्यवस्था उन्होंने समय से पहले बना के रखी हुई है। बच्चे के जन्म लेने से पहले मां के स्तन के अंदर दूध भर देता है, कितनी बड़ी भगवान की करुणा है। बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, उससे पहले दूध तैयार होता है, जरूरत से पहले जो जिस चीज की जरूरत है समय से पहले भगवान तैयार करके रखते हैं, ये भगवान की दयालुता है। इस पृथ्वी के ऊपर पानी की हमको जरूरत पड़ेगी तो तीन हिस्सा पानी समुद्र के रूप में भगवान ने नमक मिला के रख दिया कि खराब नहीं हो जाए। समुद्र का पानी खराब नहीं होता है, वैसा पानी तो खराब हो जाएगा लेकिन खराब नहीं होता है। जितना चाहिए वो सूरज की तपत से ऊपर उठा लेते हैं, बादल बना लेते हैं और मीठा करके बरसा देते हैं और नदियों में बहता है और हमको पीने के लिए मिलता है। तो हमारे लिए कितना बड़ा पानी का जखीरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, कभी खत्म होने वाला पानी ये नहीं है। एक हिस्सा तो पृथ्वी का है, तीन हिस्सा पानी का है। इस पानी के बगैर तो हम जी नहीं सकते। और पानी की व्यवस्था कितनी बड़ी भगवान ने बना के रखी है कि खराब भी कभी नहीं हो सकता है, और उसको मीठा करने का भी साधन इतना बड़ा विशाल सूरज के गोले से उसको कैसे पानी से ऊपर से बादल बनाता है और समय के ऊपर वर्षा करता है, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी ये फैक्ट्री है। एक आदमी भी इसके अंदर कोई नौकरी नहीं कर रहा, एक पैसे का भी किसी को बिल नहीं रहा है, न पाइप है, न मोटर है, न टैंक है, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और फ्री में हो रहा है। क्यों? इसलिए कि भगवान हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था बना के रखी हुई है। वो इतना हमसे प्रेम करते हैं कि हमको जीने के लिए सांस लेने की कितनी आवश्यकता है, एक मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, 24,000 से अधिक टाइम दिन रात में सांस लेते हैं, और ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं इसके ऊपर न किसी सरकार का हुक्म चलता है, न किसी राजा महाराजा का हुक्म चलता है, किसी के हाथ में नहीं है, मुफ्त में सबको मिल रही है, चोर को भी मिल रही है और साधु सन्यासी को भी मिल रही है, और मुफ्त में मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही? 2 मिनट जी नहीं सकते इस हवा को बंद कर दे तो, लेकिन वो सबको ये मुफ्त में दे रहा है। क्यों? इसलिए कि हमसे वो प्रेम करता है। वो क्यों हमसे प्रेम करता है? भगवान कहते हैं ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, आप सब जीव मेरे अंश हैं। पिता हम अस जगतो माता धाता पितामह, मैं ही जगत का माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पालन पोषण करने वाला हूं। वो क्योंकि हमारा माता पिता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, उससे अधिक भगवान हम सबसे प्रेम करता है। और जो हमसे प्रेम करता है, हमसे क्या चाहता है वापसी में? कि हम भी भगवान से प्रेम करें। और यही धर्म है, भागवत कहती है यही धर्म है। धर्म यही है कि जीव भगवान से प्रेम करना प्रारंभ करे। ये कथा का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम सुनने वालों के हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो जाए। प्रेम तो है, सबके हृदय में प्रेम है। यहां से कल रात, आज शाम से कथा यहां से चल रही है कि सबका हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है, परिपूर्ण रूप से प्रेम सबके हृदय में बस रहा है, लेकिन वो प्रेम बाहर नहीं निकल रहा है। उस प्रेम का अभी तक जो है भगवान के साथ हम उस प्रेम को कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, ये मालूम हमको नहीं है। प्रेम बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, प्रेम का उदय नहीं हो रहा है। कारण क्या है? तो कहते हैं कारण ये है, अभी तक चित्त की शुद्धि नहीं हुई है, मन मैला है, दरवाजा बंद है, बाहर नहीं प्रेम आता है, क्योंकि मन मैला है, चित्त अभी तक साफ नहीं है, शुद्ध नहीं हुआ है। तो ये सत्संग चित्त शुद्धि के लिए है, मन को शुद्ध करने के लिए है, चित्त को शुद्ध करने के लिए सत्संग है। और सुबह इस बात के ऊपर चर्चा चल रही थी कि हमारा चित्त शुद्ध कौन करेगा, हमारे मन को चित्त को शुद्धि कौन करेगा, साफ कौन करेगा? हम अपने प्रयास से करेंगे या कोई और साधन है मन को पवित्र करने का? भक्ति भागवत में और भगवत गीता में विशेष रूप से भक्ति प्रधान ग्रंथ है ये, और भक्ति का अर्थ होता है छोटा बनना। छोटा बनने का मतलब भगवान बड़े हैं, हम उसके छोटे बच्चे हैं। और ज्ञान का अर्थ होता है थोड़ा बड़ा बनने का प्रयास करना। ज्ञान के अंदर चित्त की शुद्धि स्वयं को करने का प्रयास करना पड़ता है। चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि अपने आप को करने का प्रयास करना पड़ता है। भक्ति के अंदर चित्त की शुद्धि भगवान करते हैं। एक उदाहरण, एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ज्ञान का सुना है। एक महात्मा थे, रोज प्रतिदिन भिक्षा करने के लिए आते थे। एक माता जी उनको बड़े प्रेम से और श्रद्धा से रोज भिक्षा देती थी। दरवाजे के ऊपर खड़े आके महात्मा कहते थे, भिक्षाम देही माँ, हे माता भिक्षा दो। अंदर से माँ निकलती थी, भिक्षा देती थी और फिर कहती थी, महाराज ज्ञान दीजिए। बाबा बोलते थे कल आएंगे। ऐसे महीनों भर भिक्षा देती थी, बड़े श्रद्धा से कहती थी, मेरे को ज्ञान दे दो बाबा, मुझे ज्ञान दे। महाराज ने कहा ठीक है, कल हम आएंगे, आपके घर प्रसाद पाएंगे और आपको ज्ञान भी देंगे। दूसरे दिन आए महात्मा जी, तो रास्ते से आते हुए जिस पात्र में प्रसाद लेते थे, भिक्षा लेते थे, भोजन लेते थे, वो पात्र को रास्ते से आते हुए कहीं गोबर देखा, उसके अंदर डाल दिया, कुछ कंकर पत्थर डाल दिए, कचरा डाल दिया। और जब आए तो माताजी ने आसन बिछा के दिया कि महाराज आओ विराजो, और विराजने के बाद बोला आप प्रसाद लीजिए, हाथ धोइए, हाथ धुलवाए, और बोला अपना पात्र निकालिए महाराज, तो मैं बहुत सुंदर खीर बनाई है, ये खीर का प्रसाद तो हमने बड़े प्रेम से बनाया है, केसर भी डाली है और इसमें काजू पिस्ता भी है, बहुत अच्छा बनाया है, ले लीजिए महाराज। तो महाराज ने अपना पात्र सामने कर दिया। माँ ने पात्र के अंदर देखा और कहा कि महाराज ये पात्र साफ नहीं है, इसमें कचरा पड़ा है, इसके अंदर मैं कैसे खीर डालूं? बोला माँ डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? बोला महाराज खीर कितनी सुंदर मैंने दूध से बनाई है, इतना अंदर लाची लाली है और केसर डाली हुई है, और ये पात्र के अंदर गोबर पड़ा है, इसमें कैसे डालूं? अरे माँ डाल देना, माँ बोलते हैं माता जी डाल दो। बाबा नहीं डाली जा सकती, पात्र खराब है, गंध पड़ा है। तब महाराज ऊपर देख के कहते मेरी माँ रोज कहती हो ज्ञान दो, तेरी खीर 5-10 रुपये की है, इस कचरे वाले में पात्र में डालने में तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है, ये तेरे अंदर का पात्र इतना कचरे से भरा हुआ है, इसके अंदर मैं अशुद्ध ज्ञान कैसे डालूं? तू कचरे के बर्तन के अंदर दूध की खीर नहीं डालती है, और मैं कई सालों से तप किया हुआ शुद्ध ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे अशुद्ध चित्त में कैसे डाल सकता हूं? चित्त की शुद्धि करो मां, चित्त की शुद्धि करो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तो हुई ज्ञान की भाषा, लेकिन भक्ति की भाषा दूसरी है। भक्ति की भाषा में जैसे छोटे नवजात बालक को उसकी मां बड़े प्रेम से मल मूत्र से निकाल के साफ कर देती है, भगवान ऐसे अपने भक्त को चित्त को साफ कर देते हैं। और इसी चित्त की शुद्धि के ऊपर आज सुबह सत्संग में बात हो रही थी कि चित्त की शुद्धि भगवान कैसे करते हैं। तब वहां ये बात श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनाई गई थी। दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में इस बात की चर्चा है कि नित्य जो भागवत को श्रद्धा से सुनने के लिए आता है, श्रुणताम श्रद्धया नित्यम, श्रुणवताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से जो नित्य आके उत्साह के साथ भगवत कथा को सुनता है। और फिर कह दिया गृणतश्च स्वचेष्टितम, बड़ी चेष्टा करके बड़ा प्रयास करके जोर लगा के उस कथा को ग्रहण करने का प्रयास करता है, उसको समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करता है, और समझने के बाद दिल से उसका अभ्यास करने का प्रयास करता है। तो ग्रहण करने का जब वो प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, तो भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं। कथा सुनने आने के लिए मन घर से इच्छा करता है, भागवत कहती है, तो भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। और कथा में भगवान कहां से हृदय में आके बैठते हैं? तब ये शब्द ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को, प्रवेश कर्ण रंध्रेण, कानों के द्वारा भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, कथा के द्वारा भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। और जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो भगवान क्या करते हैं हृदय में आकर? तब लिखा है धुनोति शमलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सारे मैल बैठ के धोता है। और चित्त की शुद्धि कौन करेगा? चित्त की शुद्धि भगवान करेंगे। तभी चेतन महाप्रभु ने ये श्लोक क्या है, इस श्लोक के ऊपर सुबह की कथा समाप्त की थी, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम। भव कहते हैं जन्म मरण को, महा कई जन्मों से हमारे चित्त के ऊपर कचरा जमा है, मैल जम गया है, चित्त रूपी दर्पण के ऊपर कई जन्मों से मैल जमा हुआ है। दर्पण आपको मालूम है किसको कहते हैं? शीशे को कहते हैं, आईने को दर्पण कहते हैं, जिसमें अपना मुंह देखते हैं। और इसको दर्पण क्यों कहते हैं? दर्प कहते हैं अभिमान को, दर्प। तो ये शीशा ऐसा है, मुंह देखने से आदमी ऐसे समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, कैसा भी हो, लेकिन शीशे में मुंह देखने से कोई बात नहीं, रंग अच्छा नहीं है लेकिन मेरी दिखावट तो अच्छी है ना, कान तो ठीक है, नाक तो अच्छा लग रहा है ना। तो जिसमें मुंह देखने से अपने आप को आदमी थोड़ा सा दर्प आ जाए, मैं बहुत अच्छा हूं, उसको दर्पण बोलते हैं। तो चित्त कैसा है? चित्त दर्पण जैसा है, चेतो दर्पण, चित्त दर्पण जैसा है। तो दर्पण में जो चीज सामने होती है वो दिखने में आती है, आती है कि नहीं आती है? आप अपने घर में लगे हुए शीशे के सामने खड़े होते तो अपना मुख दिखता है कि नहीं दिखता है? तो जब भगवान कहते हैं भगवत गीता में सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, तो हृदय आपका दर्पण है, हृदय आईना है, भगवान अंदर बैठा है तो दिखता है आपको, भगवान दिख रहा है आपको हृदय में? नहीं दिख रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा है? शीशे में अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती? क्यों? इसलिए कि शीशे के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, मिट्टी चढ़ी हुई है, दस चढ़ी हुई है। मिट्टी चढ़े हुए शीशे के अंदर अपना मुंह नहीं देखा जा सकता। आपने देखा है कभी एक महीना घर बंद करके जाते हैं तो बहुत मिट्टी लग जाती है शीशे के ऊपर, तो हम आके सामने खड़े होते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या करते हैं उसको, कपड़ा लेके थोड़ा सा झाड़ देते हैं ऊपर से, कपड़े से झाड़ने से वो मिट्टी होती है उतर जाती है और अपना मुंह दिखने में आ जाता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि मिट्टी भी जम जाती है ऊपर, बरसात भी आ जाती है, कभी रंग करते हैं तो शीशे के ऊपर गिरता है तो झाड़ने से नहीं उतरता। फिर क्या करते हैं, पानी से भिगोकर पोंछा लगाते हैं उसके ऊपर, उसको अच्छी तरह से रगड़ते हैं, कागज से साफ करते हैं, तब शीशा साफ हो जाता है तो अपनी शक्ल दिखती है। ऐसे ठीक इसी तरीके से हृदय रूपी चित्र के ऊपर कई जन्मों का मैल लगा हुआ है, उसका मार्जन करो। मार्जन कहते हैं सफाई को, उसकी सफाई करो। किस चीज से सफाई करें, तब महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो। अनादि काल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धो के साफ कर देता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कीर्तन करने से हमारे हृदय का मैल साफ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन 50 लोग सत्संग में आते हैं, कभी 500 लोग सत्संग में आते हैं, उनमें से एक आधा होता है वो कहता है कि हमारे को भगवान का नाम लेना है, आप बताइए भगवान का नाम कैसे जपें, भगवान की भक्ति कैसे करें। लेकिन उन 50 लोग नहीं आते हैं, तो सबको भगवान का कीर्तन तो सबने किया लेकिन किसी के ऊपर बहुत हल्का सा मिट्टी जमी हुई थी, एक दिन झाड़ने से उतर गई, और किसी के ऊपर पोथा लगाने से इतना पोथा लगा हुआ था मैल का कि पोचा लगाने से भी उतारने में देर हो गई, रगड़ाई ज्यादा करनी पड़ती। तो जो व्यक्ति सत्वगुण का है, वो भगवत कथा सुनेगा तो उसके हृदय को पवित्र होने में देर नहीं लगेगी और वो भगवान की भक्ति बहुत जल्दी शुरू कर देगा और भगवान के नाम जपने में उसको रुचि होने लगेगी। वही व्यक्ति अगर रजोगुण का है तो बहुत समय लगेगा, उसको सुनने तो आएगा लेकिन सुनने के पीछे उसका भाव होगा कि मुझे इससे ये लाभ होना चाहिए, मैं कथा में गया हूं तो भगवान करे मेरे धंधे में बरकत पड़ जाए। लेकिन भगवान आपकी भक्ति करो ये मन में नहीं आएगा, लेकिन लाभ संसार का लेने का मन में आएगा। तो उसकी मिट्टी जरा ज्यादा है इसलिए भगवत भक्ति नहीं आएगी, संसार के सुखों की अभिलाषा रहेगी। और कोई तमोगुणी व्यक्ति है, किसी कारण से कोई शब्द भी उसके कान में पड़ता है तो प्रभाव तो उसके ऊपर भी डालेगा लेकिन उसके तो हृदय के ऊपर बहुत ज्यादा मैल चढ़ा हुआ है जिसको हटाने में टाइम लगेगा। उदाहरण कभी देते हैं, आग में ताकत है जलाने की, कहीं भी आग जलाओगे तो जो उसके सामने आएगा उसको जला दोगे, अगर सूखा घास होगा तो एकदम जल जाएगा, लेकिन अगर आधा लीला आधा गीला आधा सूखा अगर घास होगा तो आग उसको लगाओगे तो जलेगा नहीं, धुआं निकलेगा लेकिन जलेगा नहीं, उसके अंदर से आग नहीं निकलेगी, लपटे नहीं निकलेंगी। और बिल्कुल गीला अगर घास है उसको आग लगाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। आग तो तीनों में एक जैसा प्रभाव दिखा रही है लेकिन सूखा तो एकदम जल गया, जो आधा गीला था जला नहीं धुआं निकला, और जो बिल्कुल गीला था आग लगाने से भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप क्या कहेंगे, ये सब लोग भगवान की कथा सुनने गए थे, इसमें कुछ लोग तो वापस आए तो भगवान की माला जप रहे हैं, भगवान की कथा कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं कर रहे, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान कि कथा तो सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव डालती है लेकिन हमारा हृदय के अंदर मैल कितना है, कितने जन्मों का है, हमारा स्वभाव सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, किस गुण का प्रभाव हमारे स्वभाव के ऊपर ज्यादा है उस हिसाब से हमारे ऊपर प्रभाव होगा। लेकिन तीनों को आग तो अपना आंच देती है, गीला जो घास होता है उसको आग लगाने से उसका पानी सूखने लगता है, आग तो नहीं होती है लेकिन पानी सूख जाता है, वो घास जल्दी सूखेगा। जो आधा सूखा है वो तो झुलस जाएगा और एक दिन दो दिन रखने के बाद उसको आग लगाओगे तो जल जाएगा। तो आग ने सूखे को तो जला दिया, लेकिन आधे गीले के अंदर से भी गिलावट खत्म कर दी, और जो बिल्कुल गीला था उसका भी पानी उड़ा दिया। तो लेकिन बाहर देखने में प्रभाव नहीं आया क्योंकि लपटे नहीं निकली, लेकिन अंदर से प्रभाव हुआ। तो ये सत्संग का रोज सुनने से, कीर्तन रोज करने से, जप रोज करने से झाड़ू निकलता रहता है, पुताई होती रहती है, तो सफाई होती रहती है। प्रकट कब होगी सफाई का प्रभाव? साधु संत कितने कितने लोग हैं जो एक गुरु का शिष्य बनते हैं, उनमें से गुरु तो कोई एक ही बनता है आगे जाकर, बाकी तो बेचारे शिष्य ही रह जाते हैं। क्यों? सबको एक समान ही तो पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर, 100 छात्र आपके स्कूल में है, सबको वही मास्टर वही चीज पढ़ाता है, लेकिन 10 साल के बाद उस स्कूल के बच्चों में से 2 ही केवल डॉक्टर बनते हैं। क्यों? सब क्यों नहीं बनते? सब क्यों नहीं बनते? पढ़ाने वाला एक है, स्कूल एक है, फी एक देते हैं, लेकिन क्यों परिणाम अलग हो, परिणाम अलग क्यों है? क्योंकि पात्र में, पात्र के भेद से, बिजली वही है, ये बिजली चल रही है वही है, ये लाइट के अंदर, ये ट्यूब के अंदर लाइट दे रही है, इसके अंदर आवाज को बढ़ा रही है, और हीटर लगाओगे तो गर्मी देगी, इसमें गर्मी नहीं है, इसमें है बिजली लेकिन गर्मी नहीं दे रही है, हीटर होगा तो गर्मी देगी, और अगर एसी लगाओ, पंखा लगाओगे तो हवा देगी, बिजली तो वही है लेकिन पात्र ये दूसरा है, तो इसमें आवाज बढ़ा रही है, वो पात्र दूसरा है तो रोशनी दे रही है, तीसरा पात्र होगा तो ठंडक देगी, चौथा पात्र होगा तो गर्मी देगी, बिजली एक है लेकिन यंत्र बदलता जाएगा तो उसका प्रभाव बदलता जाएगा। तो ऐसे हमारे हृदय में जैसा हृदय में प्रभाव हो है, कौन से गुण का प्रभाव है, वैसा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, आएगा जरूर, लेकिन वैसा आएगा जैसा हमारा स्वभाव है। लेकिन हृदय को पवित्र करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, एक जन्म भी लगे जाए तो बहुत घाटे का सौदा नहीं, कई जन्मों का मैल जमा हुआ है, एक जन्म लग जाए तो घाटे का सौदा नहीं है, 10-20 साल लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे कारोबार को स्टेप, कितने साल बच्चे पढ़ता है तब जाके इंजीनियर बनता है, 25 साल जिंदगी के देने पड़ते, 20-25 साल तक पढ़ने के बाद किसी एक डिग्री को प्राप्त की जाती है, तो क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ साल नहीं लगेंगे क्या? तो ये प्रक्रिया पवित्र करने की, हृदय को शुद्ध करने की करनी चाहिए, आरंभ और करता ही रहना चाहिए, एक दिन हृदय शुद्ध अवश्य होगा। कौन करेगा? भगवान करेंगे, ये बात आप एक मान लीजिए, हमारे चित्त की शुद्धि भगवान करेंगे, और कब करेंगे? जब हम श्रद्धा से भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान का नाम लेंगे। इसलिए कलयुग के अंदर तो विशेष रूप से अपने आत्म साक्षात्कार करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए एक ही साधन है, एक ही साधन है, केवल हरिहर नाम, हरिहर नाम, हरिहर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, हरिहर नाम, हरिहर नाम, हरिहर नाम एव केवलम। कलौ नास्ति नास्ति नास्ति, कल युग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, गत्यरनथा, गति प्राप्त करने का, गति का मतलब जल्दी आगे बढ़ के अपने मंजिल तक पहुंचने का, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। 3 बार ऐसे क्यों बोला? इसलिए 3 बार बोला कि सतयुग में ध्यान करने से भगवत प्राप्ति होती थी, कलयुग में ध्यान करने के लिए बैठोगे तो 100 और चीजें आपके दिमाग में आएंगी, उस वक्त आप आंखें बंद करके ध्यान करने का प्रयास करो, जो चीजें याद नहीं है वो सब उसी वक्त याद आएंगी। कलयुग में ध्यान करना संभव नहीं है, ध्यान करने के लिए तो पुराने जमाने में राजा महाराजा राज छोड़ के वन में चला जाया करते थे, तो अब घर छोड़ के कौन जाएगा? कि घर के अंदर शहर के बीच में चारों ओर टीवी चल रही है, गोर ये शोर शराब है, इसके बीच में क्या एकाग्र होकर ध्यान कर सकते? असंभव है। और इतना संभव है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में अर्जुन को ध्यान करने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। 6ठे अध्याय का नाम ध्यान योग है, और भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करो अर्जुन, और अर्जुन कहते हैं असंभव, नहीं हो सकता है। अर्जुन ने हाथ उठा दिया ऊपर, अर्जुन ने कहा कि मन को एकाग्र करना मेरे बस की बात नहीं है, असंख्य महाबाहो। हाँ भगवान, अर्जुन कहता है मनो दुर्निग्रह, ये मन को निग्रह करना बहुत मुश्किल है, चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवद्रढ़, ये मन बहुत चंचल है, ये बहुत बलवान है, ये बहुत दृढ़ है, इसको बस में करना मेरे लिए संभव नहीं है। हवा को रोकना जितना मुश्किल है, तूफान को दीवार से नहीं रोका जा सकता है, ऐसे मन को नहीं बस में किया जा सकता। अर्जुन जो तो राजपुत्र था, पांडव नंदन था, भगवान श्री कृष्ण का सखा था और द्वापर युग में था, सब सुविधाएं थी, वो भी इस ध्यान में अपने आप को असमर्थ कहता है। तो ध्यान की प्रक्रिया जब द्वापर युग में संभव नहीं थी, तो अब उसको करने का प्रयास करना अपने आप को थोड़ी देर के लिए अंधेरे में रखने का प्रयास है। लेकिन ध्यान करना बहुत संभव नहीं है कलयुग में। कोई एक आधा योगी अगर हिमालय में जाके रहे, सब कुछ छोड़ के, हो सकता है ध्यान करके अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर ले। तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, उस वक्त योगी अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं जब एकाग्रचित होते हैं। कहां जब एकाग्र होके मन को लगाते हैं, जब हिमालय में जाके बहुत से महात्मा ऋषि जाया करते थे पहले, अब घर में बैठ के हम योग का ध्यान का अभ्यास करें, ये असंभव है। त्रेता युग में भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग यज्ञ करना था। तब दूसरी बार कहते हैं नास्ति, नहीं रास्ता नहीं है। क्या रास्ता नहीं है? यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है कलयुग में। यज्ञ करने के लिए सामग्री शुद्ध चाहिए, उसकी उपलब्धि बहुत मुश्किल है, और यज्ञ कराने के लिए पंडित चाहिए, ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो शुद्ध मंत्र का उच्चारण करे और मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करे, ऐसा ब्राह्मण मिलना भी मुश्किल है। न शुद्ध सामग्री मिल सकती है, न ऐसा ब्राह्मण मिल सकता है। इसलिए यज्ञ करने से कोई लाभ होगा कलयुग में भगवत प्राप्ति संबंधित, असंभव है, असंभव है। त्रेता युग में हमने देखा कि भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ ने महायज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ के अंदर से यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ और अपने हाथ से दूध का खीर का लोटा दिया महाराज दशरथ को। अभी यज्ञ करने वाले से पूछो कि कोई देव प्रकट होता है क्या आजकल? कहते हैं विश्व शांति के लिए महान यज्ञ किया जा रहा है, 108 कुंड का यज्ञ विश्व शांति के लिए किया जा रहा है, और यज्ञ की समाप्ति के समय जब दक्षिणा जब बांटी जाती है, तब वहीं पहले अशांति फैलती है, वहीं प्रसाद के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मारामारी होती है। विश्व की शांति की बात करते हैं, लेकिन उस यज्ञ के परिसर के अंदर अशांति फैलती है। देखा है आपने कि नहीं देखा है? प्रसाद के ऊपर कितनी अशांति होती है, एक दूसरे के ऊपर मारामारी शुरू हो जाती है, उधरी और दक्षिणा आगे पीछे कम मिल गई, रंग को बदल के किस चीज का मिल गया, तो अशांति तो यज्ञ कराने वालों में ही हो जाती है। तो ये यज्ञ असंभव है कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए, नहीं हो सकता। शुद्ध सामग्री है कहां? किसी जमाने में घी कहने से समझ में आता था कि घी मतलब घी, और फिर कहने लगे शुद्ध घी, इसका मतलब कोई अशुद्ध चीज भी आई है। फिर कहने लगे 100% शुद्ध घी, इसका मतलब कुछ प्रतिशत उसमें मिलावट है। तो अब तो घी शब्द कहने से तो किसी को मालूम नहीं घी किसको कहते हैं। पहले कुछ और था ही नहीं, घी का मतलब घी होता था, तो वो शुद्ध कहां से मिलेगा घी? अब तो देखना दुर्लभ हो गया है। तो शुद्ध चीज नहीं है तो यज्ञ होगा कहां? किसी ने किसी से पूछा कि क्या होगा यज्ञ से महाराज, यज्ञ करने से क्या तुम्हारे 2 चम्मच घी डालने से सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा क्या? हम कहते हैं ना यज्ञ करने से सारा अनुकूल हो जाता है वातावरण और बहुत शुद्ध हो जाता है, हाँ, और देवता लोग आके आशीर्वाद देते हैं। बोला कि महाराज क्या बात करते हो, कोई 100 ग्राम घी डालने से वातावरण शुद्ध होता है क्या? महाराज भी मौज में बैठा हुआ था, बोला 100 ग्राम घी डालने से वातावरण शुद्ध नहीं होता है, तो मैं आपको बोलता हूं उसी आग के अंदर 100 ग्राम मिर्ची डाल दो, देखो तेरे सारे पड़ोस के अंदर खांसी होती है कि नहीं होती है। आपने देखा है कभी मिर्ची किसी के घर में तली जाती है तो बाहर से जाने वाले को खांसी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। आग में मिर्ची डालने वाले से अड़ोस पड़ोस बैठ नहीं सकता है, खांस खांस के मरता है, तो घी डालने से शुद्ध हो जाएगा वातावरण, इसमें क्यों आपको एतराज है, संदेह क्यों कर रहे हैं इस बात के ऊपर? अरे कोई भी अग्नि में चीज डालते हैं तो 1000 गुना ज्यादा उसका पावर बढ़ता है। हम बोलते हैं ये देखो ये भी तो बिजली है ना, ये भी तो आग ही है एक प्रकार की, इस आग के द्वारा ये हमारा जो हम बोल रहे हैं शब्द, ये आप तक क्या बाहर तक जा रहा है, कितना बड़ा विस्तार इसका हो रहा है। तो जब ऐसे विस्तार आग सब चीजों को कर सकती है, तो थोड़ा सा घी पवित्र कर ले वातावरण, इसमें कौन सी बड़ी बात है? संभव है, लेकिन भगवत प्राप्ति में के लिए असंभव है, वो भी मार्ग नहीं है। और द्वापर युग में बहुत बड़ी भगवान की पूजा अर्चना की जाती थी, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के सामने बैठ के घंटों तक पूजा हुआ करती थी। अब मंदिरों में जाना मुश्किल हो गया, मंदिर सारे लाखों करोड़ों रुपये लगा के लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन किसी दिन वार को तो मंदिर के अंदर 25-50 लोगों की भीड़ दिखती है, नहीं तो प्रायः पंडित जी अकेला ही घंटी। और आपने देखा है बड़े मंदिरों के अंदर आजकल एक ड्रम के साथ वो झालर और ड्रम का एक मैकेनिकल चीज बनी हुई आई है, देखिए ना, बिजली से लगा देते हैं तो ड्रम भी बजता है और झालर भी आरती बजती है। इसके बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि आदमी कोई बजाने वाला नहीं जा रहा है। मंदिर में अगर 10 आदमी जाके घंटी बजा देते और झालर बजा देते तो क्या जरूरत थी मशीन लगाने की? ये मशीन ये बात बता रही है कि कोई मंदिर में आने को तैयार नहीं, इसलिए मजबूर पुजारी आरती जब करता है तो घंटी को बटन ऑन कर देता है, गड़म ढड़म हो रहा है, इतना शोर होता है लगता है 150 आदमी नहीं 500 आदमी मंदिर में होंगे, और अंदर जाने से पता लगता है अकेला पुजारी है। वो भी कभी होता है कि नहीं होता है, हो सकता है आगे चल के आरती भी अपने आप ऐसे होने लगे जैसे अगरबत्ती आजकल होगी चमक रही है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, कोई सुगंध नहीं है, लेकिन लाल लाल दिखती है। तो ये सब चीज किस बात का निशानदेही कर रहे हैं, किस बात की तरफ हमारे को इशारा कर रहे हैं कि लोग जा नहीं रहे, घंटी बजाने वाला लोग कोई है नहीं। पुराने जमाने में हमारे हमने देखा था मंदिरों के अंदर शाम के वक्त आरती से पहले 25-50 माताएं जाती थी और साथ में घी ले जाया करती थी कि दीप में वो घी डाल के आते थे, वो कटोरी में घी इकट्ठा होता था, दूसरे दिन महाराज वही घी से भगवान का आरती किया करता था। तब से घी चला गया तो अब किस चीज से आरती होती है वो तो भगवान जाने, लेकिन घंटी नहीं बजती है और मशीन की घंटी इसलिए बजती है कि लोगों ने जाना मंदिर में बंद कर दिया, और इसलिए मंदिर के अंदर पूजा प्रतिष्ठा करने का प्रयास कितना भी करे लेकिन भगवत प्राप्ति का कलयुग में ये भी सुलभ मार्ग नहीं है, बहुत मुश्किल मार्ग है। तब कौन सा मार्ग बहुत आसान है? तब कहते हैं कलौ केवल कीर्तनात्, कलयुग में केवल कीर्तन, कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम साथ बैठकर कीर्तन करना, और इसका पूरे विश्व के अंदर हमने बहुत बड़ा प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ जिसके तत्वधान में और सानिध्य में ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है आप लोग भक्तों के सहयोग से, इस आपकी संस्था के संस्थापक आचार्य परम पूज्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद ने 1965 में भारत से बाहर जाकर पाश्चात्य देश में अमेरिका के किसी उद्यान में बैठकर इसका एक बहुत बड़ा प्रयोग किया कि यज्ञ करने से भगवत प्राप्ति सुलभ नहीं है, मंदिर में पूजा करने से अगर सुलभ नहीं है, ध्यान करने में सुलभ नहीं है, तो शहर के बीच में एक बहुत बड़े पार्क में एक बहुत बड़े उद्यान में बैठकर और 2 मंजीरे उठाकर खड़ताल उठाकर भगवान के नाम का कीर्तन किया अमेरिका में, और 65 से 66 और 67 तीन सालों में हजारों की संख्या में लोग का जीवन परिवर्तित हो गया। वो लोग जो विदेशी थे जिनको ये भी मालूम नहीं था भगवत गीता क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, संस्कार क्या होते हैं, उन लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया। उनके जीवन में इतना बदलाव आया कि उन्होंने वस्त्र तो पहनना शुरू किए, धोती और चोटी रखना शुरू कर दी और माथे पे तिलक लगाना शुरू कर दिया और शुद्ध शाकाहारी बनके और गौशालाएं खोल के और गली गली में जाकर, शहर शहर में जाकर, गांव गांव में जाकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे। तो केवल कीर्तन से भगवान के पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा विराट आंदोलन स्थापित किया गया, एक भारत के अंदर से गए हुए 70 साल के व्यक्ति के द्वारा। 70 साल की आयु में लोग थक हार के खटिया के ऊपर पड़ जाता है, उठने में लाचार हो जाता है, लेकिन ये महात्मा 70 साल की आयु में वृंदावन को छोड़कर और अमेरिका में गए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण प्रेम और भक्ति का संदेश देने के लिए। इतना बड़ा प्रयोग किया कि लाखों की संख्या में उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुआ, कृष्ण भावना अमृत संघ, हरे कृष्ण हरे संस्था, हरे कृष्ण हरे राम के नाम से लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। तो ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रयोग बहुत बड़े स्तर के ऊपर किया गया है, और इस प्रयोग में हमें बहुत 100% 100% सफलता हुई है कि कल युग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन, केवल भगवान के नाम का जप ही एकमात्र साधन है अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। एक ही ये बहुत सरल सुलभ, हर एक उसको अपना सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी जाति का हो, कोई भेद नहीं है। सब आइए और इस भगवान के महाप्रसाद हरि नाम कीर्तन को अपने जीवन में अपनाइए, अपना जीवन सफल कीजिए। हरे कृष्ण। तो कल युग में आपके लिए एक ही रास्ता है और आप सब उस रास्ते के ऊपर चल के अपना जीवन सफल कर सकते हैं। किसी की कोई योग्यता क्या है इसकी आवश्यकता नहीं है। जो जहां जिस स्तर पे जिस जगह पे खड़ा है, जैसे भी है, उसी हालत में आ जाएगा, भगवान के नाम के इस महान संकीर्तन में भाग लेगा, तो अपने आप को गंगा स्नान के समान पवित्र करके भगवत प्रेम और भगवत भक्ति का पात्र बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। तो आइए भगवान के इस पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, आप सब इसमें भाग लीजिए। कल दोपहर और कल शाम को भी और परसों दोपहर और परसों शाम को भी ऐसे भागवत के ऊपर आधारित हरि भक्ति और हरि कथा आपके सामने सेवा का ये अवसर हमको मिलेगा। आप आइए और इसमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। और हमारा उद्देश्य है कि जब ये कथा समाप्त हो, उससे पहले आप में से कुछ लोगों के चित्त रूपी दर्पण के ऊपर से मिट्टी उतर जानी चाहिए और आपके मन में भगवान के नाम को जपने के लिए लालसा होनी चाहिए, आपके मन में लोभ पैदा हो कि हम भी भगवान की भक्ति करने के लिए थोड़े आगे बढ़ें। अगर ये दो तीन बातें आपके अंदर आ गई इन तीन दिनों के अंदर, तो हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा से हमारी सेवा भगवान ने स्वीकार की और आपके मन के अंदर अपनी प्रेम और भक्ति को प्रदान किया। इन वचनों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। अब हम कीर्तन करेंगे, आप सब कीर्तन में भाग लें। कीर्तन के शब्द ये 16 अक्षर का महामंत्र है जो ब्रह्मा जी के द्वारा कलि संत ने उपनिषद में कल युग के लिए दिया गया है। ये ब्रह्मा जी का निर्देशित मंत्र है। आप सब आइए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, मेरे पीछे आप दोहराइए, हरे कृष्णा।